ബ്രഹ്മനരാകൃതി സൗന്ദര്യസാര സർവസ്വം വന്ദേ നന്ദാത്മജം പ്രപന്ന പാരിജാതായ തോതൃവേത്രൈ ഗോപാണയേ ജ്ഞാനമുദ്രായ കൃഷ്ണായ ഗീതാമൃതദുഹേ നമഃ വസുദേവ സുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും വംശീവിഭൂഷിതകരാന്നവനീരദാഭാത് പീതാംബരാദരുണബിംബഫലാധരോസ്താത് പൂർണേന്ദുസുന്ദരമുഖാദരവിന്ദനേത്രാത് കൃഷ്ണാത് പരം കിമപി തത്വമഹം ന ജാനേ ഹരി ഓം നമോ പരമാത്മനേ നമഃ ശ്രീ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. एक बात कहने में आई थी कि शास्त्रों में पारमार्थिक उन्नति के लिए अधिकारी बनकर के जाना होता है, सांसार काम को छोड़ करके और अलग होकर के परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। ऐसे मैंने शास्त्रों की बात कही, उसके साथ एक बात कह दी, कबीर साहब ने भी ऐसा कहा है कि कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसका तात्पर्य ये नहीं था, बिल्कुल है भी नहीं, साखी का भी अर्थ नहीं है कि कबीर साहब कोई गलत कहते हैं, है ही नहीं, ना मेरा आशय था। शास्त्रों की बात कहकर उस समय मैंने कबीर साहब की एक साखी कह दी। तो शास्त्रों में ऐसी बातें भाई आती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, खास ब्रह्म सूत्र में ऐसी बात आती, मानो विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुक्तता प्राप्त करने पर वो ज्ञान का अधिकारी होता है। उपनिषदों में आता है और शास्त्रों के वचन आता है, संन्यास्य श्रवणं कुर्यात्, पहले संन्यास लो फिर श्रवण करो, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर तत्व प्रदात संशोधन, तब ज्ञान होता है, ऐसी बात आती है। भगवद गीता में एक विलक्षण बात बताई, उसकी तरफ मेरा लक्ष्य था। मेरा शास्त्रों की निंदा में तात्पर्य बिल्कुल नहीं, शास्त्रों में ऐसा आता है, उस विषय में गीता कहती है कि व्यवहार में ही आप परमार्थ को सिद्ध कर सकते हो। तो ये कोई शास्त्रों विषय नहीं आता, ऐसी बात नहीं, पर गीता ने ये विलक्षण बात कही है, व्यवहार में परमार्थ सिद्धि कर लेना। युद्ध जैसे घोर कर्म में अर्जुन कहते हैं, घोरे कर्मणि किं नियोजयसि, मेरे को घोर कमाऊं क्यों लगाते हैं। जो युद्ध रूपी कर्म है इसमें मेरे क्यों लगाते हैं, तो उस युद्ध रूपी क्रिया में भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आपसे आप प्राप्त हुआ कर्तव्य होना चाहिए, मारने में तात्पर्य नहीं। जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसी कर्तव्य से परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बात बहुत विलक्षण रीति से भगवद गीता ने कही है। इस वास्ते कोई शास्त्रों की संतों की निंदा में किंचित मात्र भी तात्पर्य नहीं। अगर देखा जाए तो कहा कि भावे विषय कमाए, मानो संसार की आसक्ति होगी विषय भोग की और संग्रह की, तो परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। वो गीता भी यही मानती है और शास्त्र भी यही मानते हैं, संत भी यही मानते हैं, भीतर का भाव है वो परमात्मा की तरफ चाहिए। जैसे नौका होती है वो जल में रहती है और इस बार से उस बार कर देती है, उस बार से इस बार ले आती है। परंतु वो नौका पार कब तक करती है? जब तक नौका में पानी नहीं भर जाता। ऐसे आप संसार में रहते हुए अपना उद्धार और दूसरों का उद्धार कर सकते हो, जब तक आप में संसार न भर जाए। और आप में लोभ और काम और क्रोध ये भर गए तो औरों के उद्धार की दूर रही, आप भी डूबोगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो भाई उद्धार अपना करना होगा, तुम भीतर से मन को साफ करो, बाहर से संसार में रहते हुए भी अपना कल्याण कर सकते हो, साधु होकर के भी कल्याण कर सकते हो, और भीतर भोगों की और पैसों की लालसा रही, इसी लोभ में लगे रहे तो बाबा जी बन जाओ कुछ नहीं होगा। चाहे जंगल में चले जाओ तो भी बने विदोषा प्रभुवंती रागिनाम, रागियों के तो जंगल में भी दोष हो जाते हैं। और गृह भी पंचेन्द्रिय निग्रह स्थापा, घर में रहता हो भी अपने इंद्रियों को वश में करता है तो वो घर में ही तब हो जाता है। कबीरा कबीरा क्या करो, छोड़ो आप शरीर, पांचों इंद्री बस करे सोई दास कबीर। तो कबीर साहब तो ग्रस्त में रहते हुए ही भजन किया है, उनके बाल बच्चे भी थे, सब थे, परंतु भीतर में विषय नहीं भरा हुआ था, इस वास्ते कल्याण हुआ। अब एक दूसरी बात और कहते हैं, आप ध्यान दे करके सुने। हमें आप लोगों के क्या शंका है, कैसी स्थिति है, ऐसी पूछे बिना अब क्या कहें, तो हमारे मन में आती हुई बात कह देंगे। आज काम पड़ा, हमारे सामने एक प्रश्न आया कि भाई हम जो करते हैं वो ईश्वर की मर्जी से ही करते हैं, बिना मर्जी के हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम बड़े बड़े छोटे छोटे काम कर लेते हैं, बिना भगवान की मर्जी के कैसे करते हैं? तो भगवान ही हमारे से पाप करवाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं, ऐसी बात है। तो ये कहाँ तक ठीक है? तो मैंने कहा ये गलत है। परमात्मा की बिना इच्छा तरवर का पत्ता भी नहीं हिलता, ये नहीं है कि तरवर का पत्ता भी नहीं हिलाता, ये नहीं कहा हिलता। तो होने में वो शक्ति है, करने की बात नहीं है। वो ही है सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही साखा। वो ही है सोई, ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि करी है सोई राम रचि राखा, भगवान ने रच रखा वही करेंगे, ये कहीं नहीं आता है। आज इतना आप सुनते हैं, किसी के मन में हो तो बोलने में तो जरा हल्ला हो जाएगा। आप अपना पूजा लिख करके मेरे को दे दें, चुपचाप उसे उत्तर मैं दे दूंगा। कहीं भी ऐसा नहीं आया कि भाई करी है सोई राम रचि राखा, भगवान कराते वही हम करते हैं। ये सिद्धांत गलत है मनुष्य के लिए। पशु पक्षी नरक स्वर्ग आदि में रहने वालों के लिए हो सकता है, मनुष्यों के लिए बिल्कुल नहीं। अगर ये सिद्धांत हो तो फिर शास्त्र कहता है ये तो करो और ये मत करो, किसको कहेंगे? गुरु कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये किसको कहेंगे? ये शिक्षा कहाँ काम आवेगी, सत्संग कहाँ काम आवेगा? क्योंकि जो उसको ईश्वर कराएगा तो उसमें राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं है उसके विरुद्ध कोई कर दे। ईश्वर हमारे से पाप करवाता है तो फिर कोई भी हमारे को पाप से दूर कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि दूर कर दे। और पुण्य करवाता है ईश्वर तो पुण्य से दूर भी कोई नहीं कर सकता। तो पुण्य पाप करवाते नहीं है, फल भोगाते हैं। करने में ये स्वतंत्र है और भोगने में प्रतंत्र है। कर्म अधिकार से माँ फलेश कदाचन, गीता कह गई है कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू कर सकता है। तभी तो मनुष्य की महिमा है, पशु पक्षियों की शरीर की महिमा नहीं गाई गई। कारण कि वे परवश है, वे कर्मों का फल भोगने के लिए बने हैं, तो वो भोग योनि कहलाती है और मनुष्य ये कर्म योनि कहलाती है। ये कर्म करने में स्वतंत्र है, शुभ भी कर सकता है अशुभ भी कर सकता है, चाहे जिस तरफ जा सकता है। आप ऐसा कह दो कि ईश्वर ने हमारे से करा दिया, ऐसे करने से कभी आप बरी हो नहीं सकते, डंडा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकोगे नहीं कि ईश्वर ने करा दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा एक कह देगा ईश्वर ने हमारे करा दिया, हत्या कर दे मनुष्य की ईश्वर ने करा दिया, कभी बचेगा दंड से? क्या राज छोड़ देगा? और राज में तो धोखा भी हो जाएगा, परंतु भगवान के यहां धोखा नहीं होगा, उसका तो जैसे करना है वैसे भरना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ किए कर्म निशंक मानी वा जाब कछु नहीं आएगा जी, हक पूछे हिसाब हजूर माही, जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी, कह सेवक साह से चोर भया नर जम के हाथ बिकाएगा जी। देखो देखो दुनिया की दोस्ती रे, मुझे देख अचंभा आप है रे, कछु सार असार विचार नहीं, सट छोड़ अमृत विष खात है रे, फिर भोग तो भोग अघाय नहीं, फिर वही बिना वही रात है रे, सुन सेवक राम हैरान भया, कुछ बात कही नहीं जाते रे। क्या कहें, भोगों में लगे हुए रात और दिन, और ईश्वर हमारे से कराता है, बिल्कुल गलत है ये बात। भगवान फल देते हैं उसमें भी एक विलक्षण बात है, उसमें भी लोग बहुत अपरिचित है, कोई कहे तुम्हारे क्या पता, मेरे को पता है मैं बहुत वर्षों तक अपरिचित रहा, इस वास्ते मेरे को पता है अपरिचित रहता है आदमी, मेरे को अनुभव है। पापों का फल दुख नहीं है, ये नई लगेगी आपको बात, पापों का फल दुखदायी परिस्थिति उत्पन्न होती, पुराने पाप है तो घर में कोई मर जाएगा, बीमारी आ जाएगी, अपमान हो जाएगा, अपजस हो जाएगा, घाटा लग जाएगा, ये तो है कर्मों का फल, परंतु घाटा लगने से दुख हो जाए ये मूर्खता का फल है, ये कर्मों का फल है ये नहीं। घर में कोई मर जाए और दुख होता है वो दुख है मोह का फल है, मूर्खता का फल है, नहीं तो दोनों दुनिया मरती है, बहुत मरते हैं, जितने संसार में मरते हैं वे सबके सब बेटा है, किसी न किसी के बेटा है, बेटा ही मरता है, चाहे पशु मरे पक्षी मरे मनुष्य मरे, पर आपको दुख नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? मेरा बेटा नहीं तो मेरा मानने में है दुख, मरने में दुख नहीं है, वो मेरे घाटा लगा, धन को मेरा माना अब उसे दुख होता है, धन तो घटता है वो नष्ट होता है प्रारंभ से, और दुख होता है मेरा मानने से, वो मेरा मान सकते और नहीं भी मान सकते, इसमें आप स्वतंत्र हो, ये बात बहुत कम जगह आती, ध्यान देकर सुने आप अपना मान सकते और नहीं भी, ये स्वतंत्र है आप। जैसे कन्या आपकी है वो आपकी बड़ी चिंता रहती है, कन्या का संबंध कैसे हो, और जब संबंध कर देते हो अच्छा घर पर मिल जाता है, प्रसन्नता पूर्वक कन्यादान कर देते हो, ऐसे करने के बाद भी कन्या आपके घर बैठी है अब उसकी चिंता नहीं है, क्यों नहीं है चिंता? कारण क्या हुआ? आप भी बोल कन्या भाई कि अब कन्या हमारी नहीं है, ये भाव हो गया अब बेटी हमारी नहीं। प्रत्यक्ष बात है, आप तीर्थों में जा रहे हैं, वो लड़की कहती पिताजी मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी मेरी माँ के साथ चलूंगी तीर्थों में, तो आप क्या कहते हो कि बेटा तेरे ससुर से पूछेंगे, और ससुर पूछने क्या जरूरत, आपकी बेटी है कि अब हमारी नहीं, अब तो उस घर की हो गई, उसकी सम्मति के बिना हम नहीं ले जाएंगे, खर्चे की कोई परवाह नहीं हम कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, परंतु बेटा तेरे को हम तेरे ससुर के पूछे बिना ले जा नहीं सकते, तो आपकी होते हुए भी अब आपकी नहीं रही, तो आप अपनी माने आप न माने इसमें आप स्वतंत्र है। अगर धन को जन को पदार्थों को घर को जमीन को आप अपना न माने, भगवान को मानना शुरू कर देगा, भगवान का जो वास्तव में भगवान का है, आपसे पहले भी वो था और मरने के बाद भी रहेगा, और भगवान सदा के मालिक है, बीच में आकर के छापा मारा है आपने, कहे मेरा है, ये करिए गलती उसका फल रोना पड़ेगा, क्यों गलती करी आपने, आपका कैसे है, आपकी शक्ति है आपको कि बेटे को आप अपने अनुकूल बना लें, अरे कम से कम शरीर को अनुकूल बना लें, बीमार न होने दें, ये हाथ में है क्या आपके, धन के हाथ में है कि धन हम धनी बने रहेंगे, धन सदा हमारे पास ही रखेंगे, ऐसे है ताकत? लड़के को सपूत बना लो, ताकत है? मरो भी कम से कम मरेंगे नहीं, अभी ऐसी आपकी शक्ति है क्या? तो ये आपके हाथ में नहीं है, नहीं है हाथ में, उसको अपने हाथ में मान लें, इस मूर्खता से दुख होता है। वो कोई चीज है नहीं, केवल मूर्खता से होता है, हमारी नहीं है और हम उस पर कब्जा करते हैं, ये बेईमानी का दुख है। बेईमानी छोड़ दो, कभी दुख नहीं होगा। तो प्रारब्ध का फल दुख नहीं है, प्रारब्ध का फल परिस्थिति है, परिस्थिति वैसी सामने आ जाएगी, सुखदायी और दुखदायी, आप उसमें हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हो। दुख होता है, हृदय में जलन होती है, वो मूर्खता का फल है, प्रारब्ध का फल नहीं है। ये बात मेरे को बहुत कम जगह मिली, इस वास्ते आपको चिताकर कहता हूँ, इसमें खूब आप विचार कर लें, और फिर शंका हो तो फिर कल पूछना, मौका लगे तो। इस वास्ते ये जो कर्मों का फल मिलता है उसमें हम प्रतंत्र है, कर्म करने में हम प्रतंत्र नहीं है। अगर प्रतंत्र होते तो ये आप लोग हम लोग इकट्ठे होकर बातें करते, इसका क्या फल होगा? कुछ फल नहीं होगा, क्योंकि जो हम तो ईश्वर कराएंगे वही करेंगे, तो शिक्षा कुछ काम नहीं आएगी। ऐसा कोई मनुष्य होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कि जिसके कर्म कोई है ही नहीं, जन्म हो गया, जन्म होता है वो कर्मों से होता है, और कर्मों में शुभ अशुभ करने की बात अगर लिख दी गई तो फिर इधर उधर कोई कर ही नहीं सकता, ये बात नहीं है। पाप पुराने कर्मों की परिस्थिति हमारे सामने आती है, उस परिस्थिति को आप बदल दो, इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो, उस परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर लो, इसमें आप सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें एक मार्मिक बात बतावे जिस तरफ दृष्टि मनुष्यों की बहुत कम जाती है, वो ये है कि सदुपयोग और दुरुपयोग इसलिए करने में हम स्वतंत्र हैं। ये खास बात, जैसे रामायण में आया है, काक भूषणी से गरुड़ जी ने प्रश्न किए हैं 7 उत्तरकांड में, उसमें पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। इसके उत्तर में कहा है कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है। जीव चराचर जाचत जी, जिस शरीर की जाचना चर अतर स्थावर जंगम संपूर्ण जीव करते हैं, चाणक हम मनुष्य बन जाए तो दुर्लभ मनुष्य शरीर है। अब बात कहता हूं, आप खूब कान खोलकर ध्यान देकर के सुने, उसमें कहा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगवती शुभ देनी। ये मानव देही कैसी है, इसमें 6 बातें बताई। नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरक जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, मुक्ति में जा सकता है, और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है, और श्रेष्ठ भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। ये 6 बातें इसे प्राप्त की जा सकती है। इन 6 के बीच में नरक सबसे पहले नाम आया, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। प्रश्न था कि सबसे बढ़िया शरीर कौन, कहना मनुष्य शरीर, उसका फल के नरक में जाना, ये निंदा हुई की प्रशंसा, क्या ध्यान दे। सब सबसे बढ़िया शरीर मनुष्य का, वो मिलने से वो नरकों में जा सकता है। तो नरक और स्वर्ग और अपवर्ग और ज्ञान विराग और भक्ति ये मिलते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य शरीर मिलने पर सदुपयोग करोगे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य मिलेगा, और दुरुपयोग करोगे तो नरक मिलेगा। तो उपयोग की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है, परिस्थिति की महिमा नहीं है, परिस्थिति के उपयोग की महिमा है। ऐसे धन की महिमा नहीं है, धन के उपयोग की महिमा है। विद्या की महिमा नहीं है, विद्या के उपयोग की महिमा है। आपको कोई पद मिल गया, औहदा मिल गया, उस पद की महिमा नहीं है, पद के उपयोग की महिमा है। ऐसे आपकी जो योग्यता है उस योग्यता की महिमा नहीं है, योग्यता के सदुपयोग की महिमा है। और सदुपयोग करने दुरुपयोग करने में आप सब कैसे स्वतंत्र हैं, कोई पराधीन नहीं है। और सदुपयोग के लिए शिक्षा होती है, वो कर्मों का फल नहीं है। सदुपयोग में सत्संग, सत्शास्त्र और सद्विचार, ये तीन कारण है। अच्छे शास्त्र सुनोगे, अच्छे विचार रखोगे, अच्छे पुरुषों का संग करोगे तो उनका सदुपयोग कर सकते हो। और ऐसे ही ऐसे दुर्व्यसनों के और ये तरह तरह के ग्रंथ जो आज आते हैं, उपन्यास आदि गंदे गंदे, उन पुस्तकों को पढ़ोगे और गंदे आदमियों का संग करोगे और गंदे विचार करोगे तो पतन होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि आपने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग करने का फल महान अनिष्ट मिलेगा। इस वास्ते वो दुरुपयोग करना है, सदुपयोग करना है, इसमें सब के सब स्वतंत्र है। कर्मों का फल है, वो करना होता है, कर्म होता है, कर्मों का फल होता है। तो कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं। तो फल तो भोगना पड़ता है। चोरी आप कर सकते हैं, परंतु न्याय होने पर चोरी का दंड आपको भोगना पड़ेगा। वहां ये नहीं चलता कि हम नहीं भोगेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक कहानी आती है, राजस्थान में रहने वाले एक गांव के आदमी, वे चले गए, चलो हरिद्वार चलेंगे। तो गांव में रहने वाले होते हैं, जब साथ होता है 10-15-20-50 आदमी इकट्ठे होकर के, चलो भी तीर्थ यात्रा में चले, एक एक की सहायता से सुगमता से चलेंगे। तो गंगा जी गए तो एक चमार था जिसको आज हरिजन कहते हैं, उसने देखा कि ये बनिए लोग बड़े होशियार होते हैं, ये धन कमा लेते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो अपने भी बनियों की बुद्धि से चलना है, ये जैसे करें वैसे हमें भी करना है, क्योंकि ये बड़े चतुर होते हैं। तो वहां गए, स्नान किया, तो स्नान करते समय पंडे ने कहा, बोलो अब क्या संकल्प करते हो, कितना दान करोगे? तो शेर ने कहा कि 100 रुपयों का दान। कैसे? अमुक ब्राह्मण को हमने 100 रुपये दिए थे ब्याज के लिए, परंतु आज गंगा जी पर मैं संकल्प भरता हूँ कि श्री कृष्णार्पणमस्तु, मैं रुपये लूंगा नहीं, ब्राह्मण को दान करता हूँ। लोगों ने कहा भाई 100 रुपयों का दान कर दिया इसने। समार ने देखा, रे भाई कौड़ी एक दिया नहीं, 100 रुपया दान कर दिया इसने, तो अपने भी करो। उसको संकल्प भराया, बोल संकल्प भरो, दान कितना करोगे? 100 रुपया करेंगे। तो 100 रुपया कैसे? अमुक वेश हमारे में 100 रुपया मांगता है, वो आज मैं अर्पण करता हूँ श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम कम कैसे रहेंगे शेठ से, हम 100 रुपया दान करेंगे। पंडा बेचारा समझा नहीं, तुमने समझा ठीक भाई, ये भी 100 रुपया तो दान करता है। दान कर दिया, घर पर आए, खेती की गई, बाजरा हो गया, तो उस ब्राह्मण ने जाकर कहा शेठ से के शेठ, हमारे अनाज हो गया है, आप रुपये लोगे तो हमें बिक्री करना पड़ेगा, बिक्री करके आप रुपये देंगे, और आपके व्यापार चलता ही है, आज के भाव से आप ले लो तो हमें तो अनाज बिक्री करना है, तो आप और मुनाफा कर लेना उसमें, हमें तो 100 रुपये अपना उतारना है, कर्जा रखना नहीं है, देना है। शेठ बोले, भाई हमने तो दान कर दिया। कहे, मैंने दान लिया नहीं आपसे, मैंने तो उधार रुपये लिए थे, मेरे आवश्यक काम था इस वास्ते। कहे, तो आपने लिए थे और मैंने भी ब्याज के लिए ही दिए थे, परंतु हरिद्वार गए तब मैंने दान कर दिया, अब हम लेंगे नहीं। कि तो महाराज कैसे नहीं लोगे, मेरे कर्ज आएगा? नहीं, कर्ज नहीं, ये दान हो गया। तुम्हारा विचार हो तो अपनी बहन को दे दो, कन्या को दे दो, चाहे जिनको तुम दान पुण्य में लगा दो, मर्जी हो तो, ये रुपये तुम्हारे हैं और किसी के नहीं, हमने दान कर दिए। बेचारा ब्राह्मण आ गया लौट करके। अब इसी तरह से वो सेठ पहुंचा उस चमार के यहाँ पर, जहां धान निकल तैयार हुआ, उसने कहा भाई लाओ रुपये दो और नहीं तो ये धान मैं ले जाऊंगा। उसने कहा कि देखो हमने दान कर दिया, हरिद्वार में गए तो उस सेठ ने 100 रुपयों का दान किया, हमने भी 100 रुपयों का दान कर दिया, हम तो देंगे नहीं। कहते दान करने की तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं, मैंने दिए है, मैं तो लूंगा ब्याज सही सबका सब। कि दान कर दिया तो कर दिया, तो कर दिया, हम तो लेंगे। तो वो छूटा नहीं, ब्याज सही तो उसने लिया और देना पड़ा। तो दान कौन सा दिया जा सकता है? जो आपने दान दिया है दूसरे को दिया है वो आप छोड़ सकते हो, आपने कर्जा लिया है वो नहीं छोड़ सकते। इसी तरह से एक दीवानी होती है और एक फौजदारी होती है, ये दो महकमा अलग है। दीवानी का झगड़ा होता है वो अलग होता है, फौजदारी का कायदा अलग होता है। एक आदमी ने किसी को 100 रुपये दिए और वो भगत आने पर कहा इतने महीने दे दूं, जा पहुंचा लाओ 100 रुपये, कहते आज तो हाजिर नहीं है परसों दे दूंगा। तीसरे दिन पहुंचा के लाओ रुपये, कहते आज तो हाजिर नहीं है कल मैं दे दूंगा जरूर ही। वो कल पहुंचा कि 9 रुपये, तो उसको गुस्सा आ गया, अब लाऊं कहां से, मेरे पास नहीं है, मिले नहीं, मैं कहां से लाऊं। कहते तुमने परसों तरसों कल ऐसे क्या, अगर नाहक हमारा समय बर्बाद किया तुम्हें देना पड़ेगा। वो कहते कैसे कहते कुछ चमड़े से उतरेगा, कहां से लाऊं रुपया हमारे पास नहीं है। वो ऐसे तेजी से बोला, उसने उस चार जमा दी मार दिया, एक दो मारी तो उसने जाकर नाश कर दी, हमारे घर पर आए और हमारे उसने पीटा। बुलाया गया कि तुमने मारा, हाँ क्या मारा, 5 जूतों की मारी। तो क्यों मारी, कहते हमारे रुपये थे इसमें 100 रुपये हमने मांगा, और कहते कल परसों करते हमारे को तंग कर लिया, रुपया देता है नहीं, हमारे को आ गया गुस्सा, इस बात में मार दिया तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। तो साहब 100 रुपयों से 5 रुपये काट लिए जाए, एक एक जूती का 1-1 रुपया और 95 रुपये दरा दीजिए। रुपया दरा दिया है नहीं, ये फौजदारी मामला है। रुपया अगर लेना हो तो दीवानी में जा करके वहां मालिश करो, वहां से रुपया मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों, मैं तुम्हें रुपये इसको मारा है, मारा है तो 5 रुपये काट लो साहब, 10 काट लो क्या निपटे। कहते यहाँ नहीं कटेगा, नहीं बढ़ेगा, यहाँ तो कायदा है, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, चाहे कैद भोगो चाहे जुर्माना करो, तुम्हें तो होगा ऐसा। तो ऐसे जैसे दीवानी और फौजदारी दो चीज है, ऐसे किसी को दुख देना है ये फौजदारी है, और दान पुण्य करना ये दीवानी है। ये कटेगा नहीं, कितने दान पुण्य कर दिया पाप हमारा कट जाएगा ना, वो पाप अलग जमा होगा। आपने जो दान पुण्य उपकार किया है वो आपका अलग होगा, दोनों पूंजी अलग अलग होगी। ऐसे नहीं साहब, इतना झूठ कपट बेईमानी करके हमने धन कमा लिया, इतना ब्राह्मण भोजन कर लिया, इतने भागवत बचा ली, इतना पुण्य कर लिया, तुम्हारा पाप कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। वो खाता अलग है, वो खाता अलग है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप छूट सकते नहीं कर्म करने में, आप जो करते हो आपको दंड भोगना पड़ेगा। दूसरे का लिया है तो देना पड़ेगा, और दुख दिया है वो हमारा फौजदारी है, उसका कड़ा दंड होगा। ऐसे मत समझना कि भगवान ने हमारे से करवा दिया हम क्या करें, तो भगवान दंड भी भोगवा देंगे, आप क्या क्या करो भोगो, और क्या करो आपको क्या करें, हम क्या क्या दंड भोगो, दुख भोगना पड़ेगा। जैसे भगवान ने करवा दिया भगवान ने दंड दिलाएगा, वो पड़ेगा ही दंड, बच नहीं सकते ऐसे कहने से। ये जो बात कहते हैं कि भगवान कराएंगे जैसे ही होगा, वही है सोई राम जी का होगा, वो होना एक और है। होने के विषय में सदैव संतोष रखना चाहिए, करने में हरदम सावधान रहना चाहिए। संतोष त्रिशु कर्तव्य, सुधारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार जैसा मिल गया उसमें संतोष करो, भोजन जैसा भगत पर मिल जाए भगवान के अर्पण करके पालो, संतोष करो। मेहनत करने पर, उद्योग करने पर धन मिल गया, जितना मिल गया उसमें संतोष करो। तो त्रिशु नैवेद्य कर्तव्य, स्वाधाय स्वाध्याय जपदाने हो, तीन में संतोष मत करो, पढ़ाई में, शास्त्रों के पढ़ने में, और जप करने में, और दान करने में, इसमें संतोष मत करो। जितना भजन स्मरण कर सको अधिक से अधिक करो, कि ये करने का है, ये फल भोग नहीं है। सत्संग नहीं मिला कि हमारे भाग्य में नहीं, भजन नहीं करते कि हमारे भाग्य में नहीं, आप शुभ काम करते नहीं हमारे लिखा नहीं है भगवान ने, बिल्कुल गलत है, ये सही बात है ही नहीं। करते तो आप नहीं तो होता नहीं, ऐसे हम भी कह देंगे एकादशी हमारे लिखा नहीं है और खा रहे हैं रोटी को हम मौज। अरे लिखा हुआ नहीं है तो करने से होता भाई, कर्तव्य कर्म और है, लिखा हुआ बात तो फल होता है। जैसे धन मिलता है, स्त्री पुत्र परिवार मिलता है, घर मिलता है, ये है प्रारब्ध का फल, पुराने किए हुए कर्मों का फल वो तो है होना, और नया कर्म है ये है करना, ये किया जाएगा इसका फल फिर मिलेगा, वो मिलने के समय आप परतंत्र हो, करने के समय स्वतंत्र हो। या नहीं कह सकते कि भगवान ने हमें ऐसे ही पैदा कर दिया, करवा दिया। रामायण में आया है, सो परत दुख पावही सिर धुनि धुनि बजताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यहाँ कर्म जोड़ तरे भवसागर ही नर समाज असपाय, ऐसा समाज पा करके जो अपना उद्धार नहीं करता, सो परत दुख पावही, मरने के बाद दुख पाएगा, सिर धुनि धुनि बजताय, पश्चाताप करेगा कि मैंने मानव शरीर खो दिया और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये काल को दोष दिया जाए कि हम क्या करें साहब, कलयुग है, कलयुग आ गया, अब उसमें हम क्या करें, समय ऐसा ही है, काल ही और कर्म ही, हमारे भाग्य में पाप लिखा था, हमने पाप कर लिया तो कर्म का दोष है, हम क्या करें। और ईश्वर ने हमारे को ऐसा ही पैदा कर दिया, उसने ऐसी हमारी प्रेरणा करी, इस बात से चोरी करी, डाका डाला, मार दिया दूसरे को, तो ईश्वर की प्रेरणा हुई, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, उनको मिथ्या दोष देना है, ये काम उनका नहीं है। ना तो समय आपसे पाप करवाता है और ना कोई कर्म आपसे पाप करवाता है, ना ईश्वर आपसे पाप करवाता है। तो क्या है कि भाई कलयुग है, ऐसा हो गया तो कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट होती है, इस बात से दोष क्यों नहीं है कलयुग, आप शंका कर सकते। उत्तर इसका यह है, कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। कलयुग में बहुत सुगमता से कल्याण होता है, बहुत जल्दी कल्याण होता है, कलयुग सम युग आन नहीं, कोई युग है नहीं इसके समान। परंतु किस गए गाय राम गुण गण विमल, भगवान के शुद्ध गुणों को गाते हुए, कथा सुनते कहते हुए, भवतर विनय प्रयास, बिना प्रयास ही उद्धार हो जाए, ऐसा मौका है कलयुग का। और कर्म भी बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, मनुष्य भी मिल गया, इससे बढ़कर भाग्य क्या होता है। अरे कबू की करी करुणा नरदे ही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते। तो कर्म भी अच्छे हैं और भगवान ने भी कृपा की है और समय भी अच्छा है, इसको दोष देना है बिल्कुल गलत है। इनको दोष देकर आप निर्दोष हो जाओ, कभी नहीं हो सकते, आप करते हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। महंगी बहुत हो गई साहब, 40 रुपए मन आता है आज, अब क्या करें, 35 रुपए मन आता है, बहुत खराब हुआ बाजार, क्या करें, ऐसे पश्चाताप करते हैं। परंतु एक आदमी के पास 1000-2000 मन अनाज है, गल्ला है पास में, उसने 1.5 रुपया मन, 2 रुपया मन, 3 रुपया मन में खरीदा है और आज 35 और 40 रुपए मन हो गया, वो भी कहता है बाजार खराब हुआ, ये कहेगा क्या बताओ आप व्यापारी को समझ लो, वो कहेगा बाजार खराब है, वो कहते मौज होगी, मौज होगी। तो खराब किस गए हैं, क्या अन्न तो चाहिए, घर में अन्न है नहीं उसके लिए खराब है, जिसके अन्न बहुत पड़ा, हजारों मन पड़ा है, उसके लिए बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे समय खराब किस गए हैं, जो भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, शुभ काम नहीं करते, उनके लिए कर्म बड़ा भयंकर है कलयुग। परंतु जिसने भजन स्मरण किया है, पुण्य किया है, उसके लिए वो तो माला माल बन गया, क्योंकि भजन करने में लाभ होता है। ध्यान देकर आप लोग सुने, व्यापारी लोग सुगमता से समझ सकते हैं, जो सस्ती आती है बहुत वस्तु और महंगी हो जाती है, उसमें मुनाफा होता है कि नहीं। ऐसे सतयुग में राम ऐसे कहने में जितना समय लगता था, उतने ही समय में आज कलयुग में लगता है। तो खरीदने में तो दाम बरोबर लगते, सतयुग में नाम जपो चाहे आज नाम जपो, पूंजी बरोबर लगती है और इसका लाभ उठेगा कलयुग के हिसाब से बहुत विशेष लाभ होगा। कितने नफे की बात है बताओ, वस्तु तो आती है सतयुग के भाव में और वो बिकेगी कलयुग के भाव में, तो कलयुग में भगवान नाम का जब बहुत विशेष लाभदायक है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ, चारों वेदों में चारों युगों में भगवान नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष कलयुग में इसका प्रभाव बहुत विशेष है, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं। बिल्कुल बेचारे थोड़ी तो उम्र होती है, थोड़ी बुद्धि होती है, थोड़ा अध्ययन होता है, थोड़ा ऐसा संग मिलता है, ऐसे मौके में भगवान का नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान ने कायदा निकाला। जैसे बालकों के लिए छूट होती है, गरीबों के लिए छूट होती है, ऐसे कलयुग के लिए छूट बताई गई कि अपना कल्याण कर सकते सुगमता से। तो ऐसा मौका कलयुग का आया है, उस कलयुग को दोष देना बड़ी खराब चीज है, बहुत अन्याय की चीज है। इस वास्ते काल को दोष नहीं है, ऐसे कर्मों की दोष नहीं है, कर्म तो अच्छे थे, मनुष्य भी मेरा भगवान की भी कृपा है। कल सुनानी महाराज ने सुनाया था तीन बात है, ये दुर्लभ है तीन चीज, मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर मिलने पर अपना कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा, और ऐसी इच्छा पर होने पर जो महापुरुष तत्व के जीवन मुक्तों का संग दुर्लभम त्रयमयी वै तत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया, ये दुर्लभ चीज है। तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ साज सुलभता से मिल गया, उस काल और कर्म ईश्वर को दोष नहीं है। दोष अभी जो नहीं करते हैं और नए नए पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, इसका दंड भोगना पड़ेगा। आप पाप तो करके पैसे कमाते हो, पैसे तो जमा होंगे बैंकों में, तिजोरियों में, बक्सों में, पाकिटों में, या घर में अलमारियों में, और पाप किए जाए वो होगा भीतर जमा, यहाँ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी की है वो जमा भीतर होगा, मरने पर एक कौड़ी पीछे नहीं रहेगा, सबका सब पाप साथ चलेगा, और धन कौड़ी एक साथ नहीं चलेगी, सब यहीं रहेगी, और उसका दंड भोगना पड़ेगा। ये बहानाबाजी से चलेगा नहीं कि ईश्वर ने करा दिया ऐसा, हम क्या करें, हम भाग्य में ऐसा ही लिखा था, हम क्या करें, समय ऐसा ही आ गया, इस समय में ऐसा करना ही पड़ता है, कह सकते हो, क्योंकि आज सरकार के कानून ही ऐसे ही बन गए, उस कानून के अनुसार चले तो हमारी रोटी ही नहीं मिल सकती, सब लाख दो लाख रुपए हम कमावे तो टैक्स में सर चलाता आता है, हमारा निर्वाह कैसे हो, तो सरकार के कानून बड़े खराब है, हम क्या करें बताओ। अपनी बात सच्ची झूठी नहीं है, परंतु आप ज्यादा कमाते ही क्यों, थोड़े कमाने से टैक्स कम लगता है, और घर का खर्चा चलाओ तंगी से, साधारण रीति से, आध्यात्म उन्नति चाहता है, धर्म का अनुष्ठान करना चाहता है, तो संसार का आराम नहीं मिलेगा, आराम का त्याग करना पड़ेगा, और आराम भी भोग लो, धन भी कमा लो, और कल्याण भी हो जाए, नहीं होगा कभी, कैसे हो जाएगा, अगर ऐसे कल्याण हो तो हरेक अपना कल्याण कर लेगा, आराम भोग भोग करके त्याग करो, थोड़ा कमाओ, टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक रहेगा, जंगलों में जाकर रहो, खेती करो, गायों को रखो, जो गायें कटती हुई भी बंद हो जाए, क्योंकि आपके पालन लोग जितनी आपके पास गायें रहेगी, खेती आपके पास रहेगी, खेती से तो गायों की पुष्टि होगी, गायों से खेती की पुष्टि होगी, और दोनों मिलकर आपकी पुष्टि होगी, वो तो आप करते नहीं, ऐसा हम तो ज्यादा चाहते हैं, खर्चा ज्यादा बढ़ा लेते हैं, छोरों की शादी में भी रुपया खाऊं खाऊं करते, व्यापार में खाऊं खाऊं, किराए में भी खाऊं खाऊं, ऐसे हरेक जगह मारवाड़ी भाषा में डाकी चढ़ो हो गया था मन में, और चाहे तुम्हारा कल्याण हो जाए, कैसे कल्याण हो जाएगा, त्याग करने का पड़ेगा भाई, त्याग शांति निरंतरम, बिना त्याग के कल्याण नहीं होगा, इस वास्ते थोड़ा सा मजबूत रहो, जंगलों में जाकर खेती करो, उसमें टैक्स भी इतना नहीं लगेगा, और गवों का भी पालन होगा, आपका शरीर भी निरोग होगा, शहरों में रहने वाले जितने रोगी होते हैं, गांव में खेती का काम करने वाले इतने रोगी नहीं होते, क्योंकि हवा शुद्ध मिलती है और परिश्रम करते हैं, दोनों कारणों से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपको घाटा भी भोगना नहीं पड़ेगा, साधारण से करो, ये ऐसा आरामी स्वाद सुखी नहीं, इसमें जितना पाप होता है, अन्याय होता है, इतना पाप सादगी में नहीं होता, सादगी तो आप स्वीकार करते नहीं, और पाप तो भगवान ने करा दिया, ऐसे कौन चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, चालक ही नहीं चलेगा भगवान, यहाँ पर साफ न्याय पर आ जाओ, फिर काम सब ठीक होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि भगवान हमारे से पाप करवाते हैं, ऐसे भगवान हो सकते हैं, पाप आपसे करवावे और फिर दंड भी आपको दें, और बाहर देख खड़े खड़े देखे हंसते रहे, तो भगवान होंगे कोई कसाई होगा, ऐसे कोई भगवान हो सकते, भगवान सूर्य में स्वरूप होता है नाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य है, ऐसे हमारे से नहीं करवाते, कभी करवाने में मदद भगवान कभी नहीं करते पापों करवाने में। आज मैंने वह दृष्टांत दिया था कि कोई आदमी खजाने में जमा करना चाहता है, साहब आपके सरकार के खजाने में 10,000 रुपए हम जमा करना चाहते हैं, बीच में जंगल पड़ता है, डाकुओं का डर लगता है, इस बात हमें सहायता मिल जाए तो आपको सिपाही मिल जाएंगे, सहायता करने वाले बंदूक वाले मिल जाएंगे, राइफल लिए हुए आपकी रक्षा करेंगे, परंतु आप कहते हैं हम आपके खजाने में से 10,000 की चोरी करना चाहते हैं, हमें मदद मिल जाएगी। मिल जाएगी, उधर जमा करते हो चोरी करते हो तो अन्याय करने में मदद मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अन्याय का दंड वहां से मिलेगा, न्याय का पुरस्कार दोनों मिलेगा, पुरस्कार और दंड, परंतु पाप करने में मदद नहीं मिलेगी ईश्वर की, कभी नहीं मिलेगी। पर दंड जरूर मिलेगा। हाँ, शुभ काम करो, भजन स्मरण करो, अच्छे रास्ते में चलो, तो भगवान से मदद मांगोगे, नाथ हमारे को मदद मिले, तो सत्संग मिल जाएगा, सद्विचार मिल जाएगा, सत्शास्त्र मिल जाएगा, आपके सद्भाव हो जाएंगे भगवान की कृपा से, जिससे अपना कल्याण कर सकते हो। तो भगवान के अनुकूल चलने में भगवान की कृपा मिलेगी और सहारा मिलेगा, सहायता मिलेगी, भगवान कराएंगे। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, अर्जुन को भी कहते हैं तुम निमित्त मात्र बन जाओ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, फिर भगवान करवा लेंगे। बिल्कुल उनकी कृपा से बड़ा ही सुगमता से काम होता है, सरल हृदय होकर के और चलता है, भगवान को याद रखता है, हे नाथ हे नाथ पुकार करता है, भगवान बड़ी कृपा पूर्वक उनका उद्धार करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हुए हैं, लोगों ने प्रत्यक्ष देखे हैं कि कितनी कृपा होती, कितने विलक्षण बात, थोड़े दिनों में इतनी उन्नति हर एक आदमी की नहीं होती। अपना पक्का विचार कर लेता है हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे पक्के विचार मात्र से भगवान खुश हो जाते। रहती न प्रभु चित चूक किए की, कर्द सुरत सोवार ये की, हृदय की बात को सदा भगवान याद करते हैं। हृदय पक्का भगवान की तरफ चलने का, उसकी सहायता भगवान करेंगे और जरूर करते हैं। इसमें आप करके देख लें, ये इसमें कोई ऐसा संदेह और ऐसी बात नहीं है। कोई अपना अच्छा हृदय बढ़ा करके पारमार्थिक उन्नति में चलता है तो उसको भगवान की मदद मिलती है, संतों की मदद मिलती है, धर्म की मदद मिलती है, सदग्रंथों की मदद मिलती है, मैं कहूँ जनता की मदद मिलती है। आज इतने पाप का प्रचार हो रहा है और लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है, पर सच्चे हृदय से बाजार में बैठ करके अगर भगवान के नाम का जप करे रात और दिन, ये माताओं इनके मन में बात पैदा हो जाएगी, लो महाराज रोटी खा लो, बिना मांगे लाकर देने वाली बन जाएगी। वो बैठा नाम जप रहा है केवल, बताओ अच्छे काम में भगवान की तरफ लगने पर आज की जनता उसकी सहायता करेगी। जंगलों में रहने वाले, साधुता पालन करने वाले, उनके पास चोरों ने डाकुओं ने जाकर सेवा की है कि हमारे किसी आपकी सेवा हो जाए, और धन के लिए डाका डालते हैं, चोरी कर लेते हैं, हत्या तक कर देते हैं, ऐसे पुरुष भी उन संतों की सेवा करते हैं, ऐसे इतिहास आया है। ऐसे अभी आज के जमाने में ऐसी बातें बीती है, क्योंकि वो रस्ते पर ठीक है, ठीक रस्ते होने पर सेवा करते हैं सभी, और गैर रस्ते पर कोई मदद नहीं करता, परंतु दंड देता है, हरे को बुरा लगता है। कोई अब आपकी छीन छीना जपटी करता है तो बुरा लगता है, परंतु भगवत भजन करता है, परमात्मा की तरफ चलता है, न्याय से चलता है, तो समाज भी उसको अच्छा कहेंगे, ठीक है, आज का समाज भी उसको अच्छा कहेंगे और उसे मदद करेंगे। इस वास्ते भाई अच्छाई की तरफ चलो, ये आपका कर्तव्य है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, कोई पशु पक्षी थोड़ा ही है जो पूरे कर्मों का फल ही होगा, नया काम नहीं होगा। नए काम को लेकर के ही मनुष्य की महिमा है कि मनुष्य शरीर में आप नया काम कर सकते हैं। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरकों में भी आप जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शुभ काम करके अच्छा काम आप कर सकते हैं, और बुरा काम करके नरकों में भी जा सकते हैं। बढ़िया मोटर आपको मिली, उस मोटर से जिसने भेजी है उसके पास में आप पहुंचना चाहो तो जल्दी पहुंच सकते हो, मन उल्टे चलो तो दूर भी बहुत जल्दी चले जाओगे। मोटर तो बढ़िया है ही, ऐसे मानव शरीर तो बढ़िया है, उल्टे चलो तो परमात्मा की तरफ बहुत जल्दी जा सकते हो, और नहीं तो उल्टे चलोगे तो महान पतन की तरफ भी बहुत जल्दी चले जाओगे। मोटर बढ़िया है और बढ़िया ऊंची चलता है, सुलटी चले किधर चले जाएगी वो। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके और आप एक बहानाबाजी करो कि भगवान हमारे से करवाते हैं और महान पतन की तरफ चले जाते हो, कोई सहायता करने वाला नहीं, ना भगवान है, ना संत है, ना महात्मा है, ना ग्रंथ है, ना धर्म है, कोई रक्षा नहीं करेगा। और ठीक तरह से कानून से चलो तो सब दुनिया मात्र उसकी सहायता करने को तैयार है। इस वास्ते सज्जो ऐसे कह करके आप बच नहीं सकते, इस वास्ते इस विषय को ठीक तरह से समझो कि हम जो करते हैं उस करने में हम स्वतंत्र हैं, भोगने में स्वतंत्र नहीं। इस बात से सूत्र इतना सा, करने में हरदम सावधान रहो, सावचेत, ऐसे सावधानी करते रहो। और होने में प्रसन्न, सुख आए तो प्रसन्न, दुख आए तो प्रसन्न, क्योंकि सुख आता है उसे पाप पुण्य नष्ट होता है, और दुख आता है उसे पाप नष्ट होता है, पुराने किए हुए कर्म नष्ट हो रहे हैं। इस वास्ते उसे प्रसन्न रहो, जो कुछ आया ठीक है। हाँ, पुण्यों का फल सुख आवे, अनुकूलता आवे, उसमें राजी मत हो। उन भोगों को भोगने से आपका पतन होगा, आदत आपकी बिगड़ेगी, पुराने पुण्य नष्ट होंगे, इस वास्ते नुकसान होगा। और पापों का बाद दुख आ जाए उसमें प्रसन्न हो जाओ, राजी हो जाओ, क्योंकि पापों का नाश हो रहा है। पापों का फल दंड है, वो जितना भोग लिया जाए पाप नष्ट हो जाएंगे। किसी के कांटा घट गया और बड़ी पीड़ हो रही है, कहा भाई तुम कांटा निकाल दो, तो उसने सुई लेकर के उस कांटे को निकाला, तो कांटा गड़ा हुआ है काठ का, और अब कांटा लगाते हैं लोहे का, स्वयं जान करके, वो तो अनजान पड़े में लगा, अब जान कर लगाते हो, और फिर आप कहते हो पीड़ा बहुत हो, छोड़ेंगे ना छोड़ो, निकाल क्यों निकाले भाई, कांटा निकल जाएगा। लाभ की बात है, और सुख का भोग करने से पुण्य रूपी पूंजी नष्ट हो जाएगी आपकी है। एक गांव में एक राजपूत ने बनिए की दुकान में से गुड़ चुरा लिया, और बनिए को पता ही नहीं, वो ले गया सुबह कि सेठ गुड़ लो गए, हाँ, तो गुड़ देने लगे, वो तोलने लगे, तोलने लगे जो वो खा ले अपने को, तो इतना तो ले ले, तो वो राजपूत बोला खा गुड़ तेरा ही, खा ले, मैं जितने दाम उसे मुफ्त में आएंगे, खा गुड़ तेरा ही, समझ तेरा ही है, इसलिए जो खा गुड़ तेरा ही है, राजी होते हो पुण्य का फल मिलने पर, खा गुड़ तेरा ही घटेगा, और नुकसान किसी का होगा, तेरा ही तो कमी आएगी, वो जितना खा तू समझता इसका खा लू मैं, आराम ले लू, भोग भोग लू, ये तेरा ही खा गुड़ तेरा ही है, वो पुण्य नष्ट होगा। इस वास्ते मनुष्य को सावधान होना है कि पुण्यों का फल सुख मिले, वो सुख उपकार करने के लिए है, दूसरों का हित करने के लिए है। धन आपके पास मिला है वो अकेला आप ही कब्जा कर बैठ जाओ, इसके लिए नहीं मिला है। नारद जी महाराज पांडवों से मिलते हैं जंगल में, पांडवों से बड़ी धर्म की बातें सुनाई, धर्म के लक्षण बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों के, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रमों के और स्त्रियों के, ऐसे नौ धर्म बताए वर्णन किए। सन्यासियों का धर्म का उसमें कहा कि ऐसे जो ऋषि हृदय से त्याग करने वाले हैं वे बड़भागी होते हैं और उनका उद्धार होता है। तो प्रश्न आता है कि महाराज संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी हम संसार सन्यासियों की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं क्या, हम रहे बाल बच्चों के सहित घर में रहे, और घर में रहते हुए भी त्यागी संत महात्मा हो, उनकी जो गति हो वही गति हम करना चाहते हैं, इसका उपाय है क्या? नारद जी का उपाय है, क्या है उपाय? तो उसने एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वंग देहि नाम अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर रति। यावत भ्रियेत जठरम, जिसमें से आपकी पेट भराई हो, पेट भराई का अर्थ क्या है, उधर पूर्ति का तो अन्न हो, शरीर के निर्वाह का कपड़ा हो, रहने का मकान हो, जिसमें आपके शरीर का निर्वाह ठीक तरह से हो जाए, इसी को पेट कहते हैं। लोग कहते हैं पेट का हुनर है, पेट के लिए करते हैं सब, तो पेट क्या, ये पेट होता है, जो खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, जिससे हमारा जीवन गुजर हो सके, ऐसा है। उतनी वस्तु तो है आपकी, आप जन्मे है तो उनके भरोसे प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे प्रारब्ध पहले से है, आपके हक की चीज है। आप हम सब भाई बहन अपनी माँ के यहाँ जन्म लेते हैं, दूध पहले से तैयार होता है, ये नहीं कि जन्म के बाद हम उद्योग करेंगे अब दूध पैदा करके फिर दूध पियेंगे, ऐसा होता है क्या? तो आपके लिए वो तैयार रहता है पहले, प्रारूप पहले रहता है पीछे रहता है शरीर, दूध तैयार रहता है, और कैसा, स्वयं मीठा डालने की जरूरत नहीं, उसमें गर्म करने की आवश्यकता नहीं, और छोड़ो तो वहां ताजा का वैसे ही वैसा रह जाता है, ठंडा होता नहीं, चाहे जितना पी लो छोड़ दो, ऐसी स्वतंत्रता बालक को मिलती। और वो माँ आपसे आपका पास में आकर चाहे गोद लेकर के वो दूध पिला दे, चाहे पास में सोकर दूध पिला दे, हमारे को उद्योग जाना भी नहीं करना पड़ता कि दूध के लिए उद्योग करे, वहां जाना पड़ेगा, जिसको गर्ज है वो पिलावे। तो ऐसा जहां प्रबंध है, दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए का अन्न न दे है क्या, उसके ऐसा है कि दांत नहीं था उस समय तो दूध दिया, अब दांत आ गए तो अन्न नहीं देंगे, वो क्यों नहीं देंगे, दांत क्यों दिया आपने, अब दिया है तो अन्न देना पड़ेगा। वो कहते भाई सब प्रबंध है हमारे, सब अन्न तुम है तुम्हारा, ये अन्न जल जब सूख जाएगा तब मरना पड़ेगा, फिर जी नहीं सकते। अब अन्न जल तेरा उठ चला बस्ती से, बस्ती से अन्न लूट जाएगा, बह क्या फिर मगर मस्ती से, आवे गो जम ले जाए जबरदस्ती से। तो भाई वो अपना अन्न जल है, तब तक जीना होता है, वो खत्म होने पर मरना पड़ता है। तो पहले से बचा हुआ है, उसकी चिंता करते हैं कि क्या खाएंगे, निर्वाह कैसे होगा। आप ख्याल करके देखो, मरता है जब अन्न भी बाकी रहता है, कपड़े बाकी रहते हैं, मकान बाकी रहते हैं, जिनसे निर्वाह होता है, निर्वाह की चीजें बाकी रहता है, मरता है पहले और चिंता करता है निर्वाह की। आश्चर्य की बात, साधु होता है, त्यागी होता है, पास में कुछ नहीं है, लंगोटी और तुम भी है, वो फूटी तुम्बी फटी लंगोटी भी बचेगी, मरेगा पहले, चिंता का निर्वाह कैसे होगा, कैसे बाल बच्चों का पालन पोषण होगा। तो आप ही चिंता करते हो, और कोई मालिक है ही नहीं, ईश्वर तो कोई है ही नहीं, क्यों आपके अधीन है सभी, वो चिंता करने वाला है, करो कोई लाख कर यो एक हो रहे, वो करने वाला है। अरे मुर्दे को हरिवेद है कपड़ो लकड़ी आग, मर गया उसको नया कपड़ा मिला, नया ऐसे नहीं पुराने कपड़े काम चला, लकड़ी मिलती है आज तराजू में तोल तोल लकड़ी दी जाती है, वो लकड़ी भी मुर्दे को बालने के लिए मिलती है। अब आशा है क्या, इसमें लकड़ी दी जाएगी उधार तो ये पीछे चुकाएगा, देगा वो पैसा, और उठाने वाले मुफ्त में मिलते हैं, ऐसे नहीं पैसा लगेगा इसका, ऐसा नहीं। तो मुर्दे को हरी देते है कपड़ो लकड़ी आग, जीवित में चिंता करे उनका बड़ा अभाग, भाग फूट गया उसमें, इसलिए चिंता करता है। काम करना, चिंता नहीं करना, काम करना रात दिन ठीक तरह से खट करके परिश्रम करना, ये नहीं करता तो आलसी है, प्रमादी है, उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर्तव्य कर्म करो मिलेगा, वो आपका है वो मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो कर्तव्य कर्म करना, कर्म अधिकार उससे माँ फले सुकदाचन, फलों में कभी नहीं, कर्तव्य कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, तो ठीक तरह से उत्साह पूर्व काम करो, फिर सब तरह काम ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं। तो भाई मुर्दे को मिलता है तो मुर्दे से भी आदमी के हो। भगवान श्री राम जी के राज्य में एक सार नाम की कुतिया थी, उसने मुकदमा किया, कुत्ता चला गया यज्ञ की शाला में तो उसको मारा, उसने माँ के आगे पुकार करी कि मेरे को इसलिए से मारा, मैंने कोई खराब काम नहीं किया। कुतिया ने शिकायत करी, साह मेरे बच्चे को क्यों मारा गया, कहते कुत्ता आ गया किसी को छू देगा, किसी को छुआ ले, छुआ तो नहीं तो फिर क्यों मारा, मैंने शिक्षा दे रखी है, देगा वो खाएगा, आपसे आप नहीं खाएगा, इस बात से इसमें क्यों गया। फिर क्या किया जाए कि जिसने मारा उसको बुलाया जाए, उसको बुलाया गया, तुमने क्यों मारा, कि यही मारा कि छू देगा, अशुद्ध कर देगा यज्ञ के पात्रों को, किसने छुआ तो छुआ तो नहीं, हमने इस धर्म से मारा तो दंड भोगना पड़ेगा। तो क्या दंड दिया जाए, उस कुतिया को पूछा क्या दंड दे, कि शिव जी मंदिर का महंत बना दे। ये क्या दंड हुआ कि वो शिवजी का निर्वाह लिखाएगा, और अगर हम डंडा खाओ ये डंडा खाना पड़ेगा, कुत्ता बनेगा, ऐसी बात आती। अब जब राम जी के राज्य में कुत्ता था, उन कुत्तों की पीढ़ियां आज तक चलती है, उनके खेती है कि दलाली है कि दुकानदारी है कि नौकरी है, क्या है सा उनके, उनका भी निर्वाह होता है, बाल बच्चे होते हैं, वंश चलता है, तो क्या मनुष्य कुत्तों से नहीं जाए, कर्तव्य कर्म करो, इसमें आलसी होते हो तो गलती है। कहते महाराज प्रारब्ध है मिलेगा, फिर हम क्यों पुरुषार्थ करें, अरे प्रारब्ध पहले पुरुषार्थ किया उसी से ही बड़ा है, प्रारब्ध आपसे आप बड़ा है, अच्छे काम किए, शुभ काम किए, उससे शुभ प्रार्थ बनाए। अभी नहीं करोगे तो काम खत्म हो जाएगा। खेती करिए जिससे अनाज है आज खाओ, और नई खेती करो फिर अगर खाओगे। ऐसे शुभ काम करना चाहिए, करने से अगर हाथ धो बैठोगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, दुख पाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। इस वास्ते अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्य को करो। साधुओं को मुफ्त में रोटी मिलती है, कुछ दाम देने नहीं पड़ते, पर वे भी आलस में प्रमाद में समय बर्बाद नहीं करते। वे भी अपना भजन स्मरण है और जो कुछ कर्तव्य कर्म वे भी करते हैं। तो पदार्थों के लिए काम करना है ये ऊंचे दर्जे की नहीं है, ये तो कर्तव्य है। वन पर्व में द्रौपदी ने पूछा है महाराज युधिष्ठिर से कि महाराज आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी नहीं रखते, वो तो जंगल में भटकते हो, और दुर्योधन जिस किसी तरह से अन्याय करके और दूसरों का हक हड़पता है और राज्य कर रहा है, आराम कर रहा है, तो कोई ईश्वर है कि नहीं न्यायकारी? पाप करता है वो तो मौज से राज्य करता है, आप धर्म और पुण्य इतना करते हो जंगलों में भटकते हो तो कहां न्याय हुआ? ऐसा द्रौपदी ने पूछ लिया है महाराज। साधारण आदमी की शंका हो जाए, आज भी क्या है? युधिष्ठिर महाराज के देवी तेरे ये प्रश्न कैसे हो गया? कि महाराज देखती हूं मैं ऐसा, कहते मैं जो धर्म का पालन करता हूँ वो सुख के लिए करता हूँ, आराम के लिए करता हूँ क्या? धर्म का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है, आराम के लिए करता है, वो धर्मात्मा है ही नहीं, वो तो आराम का गुलाम है। आराम के लिए धर्म करता है, वो धर्म के तत्व को ही नहीं जानता। धर्म तत्व वो है जो मनुष्य का खास कर्तव्य है, वो धर्म से च्युत हो जाए, झूठ कपट बेईमानी करे, ये मनुष्य बने से ही नीची बात हो गई, पशुओं से ही नीची हो गई। पशु है वे तो पाप का फल भोग करके मनुष्य द्रोणी की तरफ आ रहे हैं, और ये पाप करके नर्क और पशु द्रोणी की तरफ जा रहे हैं, बढ़िया कौन है बताओ? वे पशु अच्छे बेचारे जो पापों का नाश करके और मनुष्य बनने के लिए, ऊंचे बनने के लिए जा रहे हैं, और मनुष्य पाप करके नरकों में और 84 लाख द्रोणी में जा रहे हैं, महान पतन की बात है। इस वास्ते गुरु भल वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देही विधाता। कहते हैं नरकों में रहना अच्छा है, मगर दुष्टों का संग खराब है, क्योंकि नरकों में रहने से तो पाप नष्ट होंगे और दुष्टों के संग से पुण्य नष्ट होंगे। इस वास्ते बरु फल वास नरक करता था, दुष्ट संग जानी दे ही बिठाता। किसी को दुष्टों का संग ना दे, दुष्कर्म करोगे दुष्टों का संग करोगे, महान पतन होगा। इस वास्ते अच्छे संग करो, अच्छे कर्म करो। इस वास्ते ये जो धारणा है कि भाई हमारे राम जी कराते हैं, ऐसा भगवान ने करा दिया हम क्या करें, ऐसा नहीं है। आप करने में अधिकारी हो, मनुष्य शरीर मिला है, इस बात से शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो। ये विवेक है, शास्त्रों से समझो, संतों से समझो, जानकारों से विचार करो, शास्त्रों का विचार करके समझो। अब इसमें कोई शंका हो तो खास पूछ लो, बने अभी नहीं तो कल ले आना पूजा, समय हो गया। नारायण 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 नारायण।